نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اسی طرح سے قرآن سے، سیرت سے، سنت سے، حدیث سے جوڑے رکھے، اور ہمیشہ ہم اپنی اصلاح کی حرص رکھتے ہوئے اس کو سنتے رہیں. الرحیق مختوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت کہانی، اور میری اور آپ کی فیوریٹ بک. آج ہم اس میں سے جو ٹاپک کریں گے وہ کیا ہے؟ وفد، حوازن، قیامت. بک کے اعتبار سے پیج نمبر 572 ہے. اس سے پیچھے جو ٹاپک ہم نے کور کیا تھا وہ کیا تھا؟ انصار کا حزن و اضطراب. یعنی اب وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی چیزوں میں سے ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ وفد حوازن کیا تھا. غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا. یہ کل 14 آدمی تھے، 14. ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا. وفد نے سوال کیا، کیا آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں؟ اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے، یعنی قولن بلیغا، دلوں کو نرم کرنے والی بات کی. اور اس میں ابن اسحاق، جو بہت ہی اولڈ ہسٹورین ہے اور سیرہ نگار ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں ان کے 9 اشراف تھے، یعنی 9 لوگ جو ان کے بڑے ایلیٹ تھے نا، اشرافیہ میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، اس کے بعد آپ سے گفتگو کی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے ان میں مائیں اور بہنیں ہیں اور پھوپھیاں اور خالائیں ہیں، اور یہی قوم کے لیے رسوائی کا سبب ہوتی ہیں. فتح الباری کی یہ روایت ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں ماؤں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں، خالائیں، پھوپھیاں اور بہنیں ہیں. ان کے خطیب زہیر بن سر تھے. ابو برکان کے ضبط، ضبط سے مراد ہوتا ہے حافظہ، میموری، اس میں اختلاف ہے. چنانچہ انہیں ابو مروان اور ابو سردان بھی کہا گیا. تو کیا پتہ چلا کہ انہوں نے اس وقت بہت ہی دلوں کو نرم کرنے والی بات کی. آپ نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں. آپ نے فرمایا، اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں، کیا آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں؟ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انہی لوگوں نے یہی کہا. جواباً آپ نے فرمایا، جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے، تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں بھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں. اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا، جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا، لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں. اور عیینہ بن حسن نے کہا، جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے. اور عباس بن مرداس نے کہا، جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں. اس پر بنو سلیم نے کہا، جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. عباس بن مرداس نے کہا، تم لوگوں نے میری توہین کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، یعنی دیر کی، پوسٹ پون کیا تھوڑا سا، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہٰذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے. البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فی حاصل ہوگا، اس سے ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے. لوگوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں. यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का ख्याल रखा और साथ ही कहा कि हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से पता चलता है कि सहाबा कराम नबी सल्लम पर कितना एतमाद करते थे और आप लोगों को हमेशा नरम गोशा दिखाते थे। आपके दिल में लोगों के लिए नरमी थी। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नुकात है जिससे हम अपने ऊपर गौर व फिक्र करते हुए देखें कि लीडर के दिल में हमेशा दूसरों के लिए नरम गोशा होना चाहिए। जैसे एक माँ है ना, वो अपने हर बच्चे के लिए नरम गोशा रखती है। ये अलग बात है कि बड़ा भाई छोटे को, छोटा बड़े को कुछ अच्छा बुरा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन माँ के लिए तो सब बच्चे एक जैसे हैं। क्यों अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के बारे में कहा कि उनके अंदर राफत है, उनके अंदर नरमी है, आपकी तकलीफ उनको दुखी करती है और आपकी खुशी उनको खुशी देती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर इन सीरत के नुकात से समझ रहे हैं ना, तो मुझे यकीन है कि आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स आपके साथ काम करने वाले गवाहियाँ देंगे कि आपके अंदर दिन ब दिन नरमी आती जा रही है। खैर, क्या आपने कहा सब अभी तो दे दो? देखिए, सीरत से आपको मामला फहमी कितनी समझ आती है। वक्त टालिए, इस वक्त का जो तकाजा है उसको लीजिए। इसी तरह तो हम हिकमतें सीखते हैं। और कहा कि जो माले फ़ै हासिल होगा, यानी इसके बाद जब भी कोई माल आएगा, और देखिए यहाँ माले फ़ै का है, जंग नहीं का कि कोई गनीमत आएगी। माले फ़ै तो कभी भी आ सकता है ना, कुफार से बगैर लड़े भी आता है। ये भी आपकी हिकमत थी। तो एक के बदले छः देंगे। लोगों ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बखुशी देने को तैयार हैं। आपने फरमाया हम जान न सके कि आप में से कौन राजी है और कौन नहीं, लिहाजा आप लोग वापस जाएं और आपके चौधरी हजरात आपके मामले को हमारे सामने पेश करें। इसके बाद सारे लोगों ने इनके बाल बच्चे वापस कर दिए। सिर्फ उयैना बिन हसन रह गया, जिसके हिस्से में एक बुढ़िया आई थी। इसने वापस करने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में इसने भी वापस कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कैदियों को एक एक कीमती चादर अता फरमा कर वापस कर दिया। यह कीमती चादर क्या होती है? कीप्त कहाँ का कबीला था पता है आपको? मिस्र का। जी, फिरौन के जो ख़ानदान के जो लोग थे, या एक तरफ तो उस वक्त मिस्री थे ना जो लोग मुसलमान थे, लेकिन दूसरे कीप्ती थे। और याद है हज़रत मूसा के हाथों एक कीप्ती का कत्ल हो गया था। बिल्कुल, टॉपिक से क्या सीखा? पहली बात है कि अल्लाह के नबी सल्लम की नज़र लोगों के जान माल पे नहीं थी। आपको कोई ग्रज नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, हुस्ने सलूक करने वाले थे, बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे, दुश्मनों के दिल मोह लेते थे, नरमी थी, जस्टिस थी। थोड़ा सा किसी को प्रवोक करके, नेकी करके, उसके बाद उसका बहुत बड़ा बदला देने वाले थे। क्या वाकई ये वाकया फबीमा रहमत मिन अल्लाह लिनत लहू बल मिसाल नहीं है? अल्लाह की रहमत की वजह से आप लोगों के लिए कितने नरम साबित हुए हैं। याद रखिए कि हमारा अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है ना, वो बंदों के साथ ताल्लुक में झलकता है। हम जितना अल्लाह के आगे झुकते जाएंगे ना, उतना हमारा दिल लोगों की मोहब्बत में चूर होगा। अल्लाह की मोहब्बत हमें बंदों की मोहब्बत तक लाती है, और फिर बंदों से जो मोहब्बत होगी ना, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ ले जाएगी। तो हमेशा अपने आप को बड़े लो प्रोफाइल पे रखें। दूसरे तो मुझसे अच्छे ही हैं, नहीं, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है। हुस्ने जन रखिए, कोई मसला ही हुआ होगा, हाँ कोई मजबूरी होगी। जो आपके पास आता है ना, उसको ऐसे बिछ जाया करें, ऐसे लगे जैसे कोई वो आपका मेहमान खसूसी आ गया है। कोई कुरान सीखने आ रहा है, कोई कोर्स करने आ रहा है, कोई दीन का काम करने आ रहा है, कोई मशवरा मांग रहा है, कोई मसला जानना चाहता है। बिस्मिल्लाह किया करें, दिल खोल के अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। दिलों में नरमी लाएंगे, आप देखिएगा आपके अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को भी पता है कि दूसरा फ़र्द किस तरह उससे बात कर रहा है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इससे ये भी पता चलता है कि आप लोगों पर एहसान करते थे और उस एहसान को बाद में इस्लाम की कुर्बत का जरिया बनाते थे। यानी अल्लाह के नबी ये नरमी करके अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं लेते थे। ये अलग बात है कि इल्म और हिल्म था। जी बिल्कुल, और जब इल्म और हिल्म जमा हो जाता है तो क्या बन जाता है? कॉम्बिनेशन, इल्म प्लस हिल्म इज इक्वल टू हिकमत। हिकमत आती ही हिल्म के साथ है। जितना अपने अंदर उतारेंगे इस कुरान को, इन चीज़ों को, उतना आपका दिल कहेगा क्या आप दूसरों के लिए खुशी का जरिया है। वो कहते हैं ना, हो रस में हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन, असूलों के पुख्ता, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन ज़ुबान नरम। ये ऐसे जैसे डॉक्टर को इंजेक्शन लगाए बहुत हैवी डोज का, समझे कि ताकत का टीका जिसको कहते थे किसी दौर में, लेकिन हाथ हल्का, पत्ता ही ना चले और सारी दवाई अंदर चली जाए। हमारा हाल ये है कि करना कराना कुछ होता नहीं, लेकिन लोगों के ऊपर हर वक्त हम गुस्सा झाड़ते रहते हैं। और ये भी एक किस्म की अपनी बढ़ाई होती है, सेल्फनेस, कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मुझे ये है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी समझ की तौफीक दे और सीरत से हिकमतें लेने वाला बना दे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं, उमरा और मदीना को वापसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत की तकसीम से फारिग होकर जेराना ही से उमरे का अहराम बांधा और उमरा अदा किया। इसके बाद अत्ताब बिन असीद को मक्का का वाली बनाकर मदीना रवाना हो गए। मदीना वापसी 24 ज़िलक़ादा सन 8 हिजरी को हुई। मोहम्मद गजाली कहते हैं कि इन फातिहाना औकात में, जबकि अल्लाह ने आपके सर पर फतेह मुबीन का ताज रखा, और इस वक्त में जबकि आप इसी शहर अजीम में 8 साल पहले तशरीफ़ लाए थे, कितना लंबा चौड़ा फासला है, देखिए वक्त कैसे बदल जाता है। जब निकले थे तो 100 ऊँटों की कीमत थी पीछे, हैं लोगों ने आपके लिए लोगों को छोड़ा हुआ था कि इनको जिंदा या मुर्दा हालत में लेके आओ, और जब फाते बन के गए तो कितनी आजिज़ी थी। आप यहाँ इस हालत में आए थे कि आपको खदीड़ दिया गया था और आप अमान के तालिब थे, अजनबी और वहशत ज़दा थे, और आपको उनस और उल्फत की तलाश थी। वहाँ के बाशिंदों ने आपकी खूब कद्र मंजलत की, आपको जगह दी और आपकी मदद की, और जो नूर आपके साथ नाजिल किया गया था इसकी पैरवी की, और आपकी खातिर सारी दुनिया की अदावत यानी दुश्मनी हेज समझी, हल्का समझा, यानी सारी दुनिया दुश्मन होती है तो होती रहे, हम तो अल्लाह के रसूल का साथ देंगे। अब वही आप हैं कि जिस शहर ने एक खौफज़दा मुहाजिर की हैसियत से आपका इस्तकबाल किया था, आज 8 साल बाद वही शहर आपका इस हैसियत से इस्तकबाल कर रहा है कि मक्का आपके ज़ेरे नगी है, यानी आपके अंडर है, और इसने अपनी किबरियाई और जाहिलियत को आपके पैरों तले डाल दिया है, और आप इसकी पिछली खता माफ़ करके इसे इस्लाम के ज़रिए सरफराजी बख्श रहे हैं। अल्लाह ताला ने सच कहा ना, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदी अजरल मुहसिनीन, यकीनन जो शख्स रास्तबाजी और सब्र इख्तियार करे तो बिला शुबा अल्लाह नेकुकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी ये दिखती है। तो आपको मुझे इससे क्या समझ आया? अगर आज आप कहीं से निकाले भी जा रहे हैं, अगर इस वक्त कहीं सी जगह के लोग आपकी कदर नहीं भी कर रहे, तो फिक्र ना कीजिए, इंतज़ार करें, अल्लाह से ज़िंदगी मांगिए, इंशाल्लाह हक वाले को अल्लाह ज़रूर फतह देता है। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में दूसरी तरफ आप देखें तो बाज़ लोगों को आपसे गलत फहमी हो जाती है। सब्र कीजिए, खामोश रहिए, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है और अल्लाह खुद ही जवाब दे देता है। उनके लिए भी कुछ बुरा ना सोचें, दुआ किया करें अल्लाह उनके दिलों से निकल जाए कोई बात, अल्लाह उनके दिल साफ़ कर दे, अल्लाह उनकी गलत फहमी दूर कर दे, और अगर जो बात वो सोच रहे हैं मेरे अंदर है तो उसको निकाल दे। देखिए, आपने कोई जन्नत में किसी के साथ कोई मुकाबला करना है? इतनी बड़ी जन्नत है, आप भी जाइए, आपके मुखालिफ भी जाएँ, आपसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत में जाएँ, आपसे दुश्मनी रखने वाले भी जाएँ, जो आपको पसंद करते हैं वो भी जन्नत में जाएँ, जो नहीं पसंद करते वो भी जाएँ, किसी के जाने से आपकी मेरी जन्नत छोटी पड़ जाएगी? तो मोमिन खुले दिल का होता है। और मुझे एक और भी आयत कुरान की याद आ रही है ना, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये वो दिन हैं जो हम लोगों के बीच में घुमाते रहते हैं, कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे। तो अल्लाह ताला हमें सीरत से भरपूर फ़ायदा उठाने वाला बनाए, अल्लाह हमें मुख्तलिफ हालात में डाल के चेक करते हैं। बस मैं तो आपको यही कहूँगी कि चलते जाएं तो सफ़र कटता है ना, इतनी मोटी किताब थी, अब तकरीबन तकमील की तरफ जा रही है, कोर्स शुरू होते हैं, कोर्स पूरे हो जाते हैं, इसी तरह एक दिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो हर दिन अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए गुजारिए, और अल्लाह से कहा करें, अल्लाह मुझे कभी नेमतों की नाकदरी वाला ना करना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफ़ियतिका وفجات نقمتك وجميع سخطك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علينا وردنا ورد عنا. اللہ ہم سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی سینے کھول دے اور آپ کو بہترین طریقے سے اپنے اس راستے میں قبول کر لے.
اب آگے دیکھیں گے پیج 574، فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور عمال کی روانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فارغ رہنا سیکھا اور نہ کسی کو فارغ رکھنا. مکہ فتح ہوا، عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ایک کامیابی مل جاتی ہے تو انسان پھر اس کے بعد کو تھوڑی دیر آرام چاہتا ہے، چھٹیاں چاہیے، ریلیکسیشن چاہیے. لیکن اللہ کے نبی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کام کرتے گئے. تو سرایا، سریت ان کی جمع، جس میں دوسرے صحابہ کرام جاتے، یعنی اللہ کے نبی کے بغیر جو کام ہو جائے وہ اس میں آتا تھا، گویا کہ آپ کی پریزنس کی ضرورت نہیں تھی اس میں. اور مال بھیجنا، زکوٰۃ کا مال کلیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں، ورکرز کلیکٹ دا زکوٰۃ. کیسے ہوا، آئیے اس کو پڑھتے ہیں. اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا. اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر ابھرنے والی قوت کو تسلیم کرنے میں تکبر مانے تھا، انہیں سر نگوں فرماتے رہے. ان سب کا مختصر سا خاکہ ہم آگے دیکھیں گے. اس میں بھی سیکھنے کی بات ہے. آپ واپس آ گئے مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ فتح ہو گیا اللہ کے حکم سے، مدینہ واپس وہی جگہ جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر چونکہ آپ اب ایک عرب کے اندر حکمران کی حیثیت حاصل کر چکے تھے، تو بڑے بڑے وفد آپ کو ملنے آتے، یعنی سوشلائزنگ بھی تھی دین کے نام پہ، پھر زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھی لوگوں کو بھیجتے، پھر سر تبلیغ کا کام، دعوت دینے والوں کو بھیجنا، گویا کہ ملٹی فنکشننگ تھی آپ کی زندگی میں. اور ساتھ ہی ساتھ جس نے سر اٹھایا اسلام کے خلاف، پھر اس سے معاملہ بھی کرتے دیکھتے رہے. مثلا پہلی چیز، تحصیل داران زکوٰۃ، تحصیل حاصل کرنا، ٹو گیٹ، کلیکٹر، کس چیز کے زکوٰۃ، یعنی مسلم حکومت لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مرتب قسم کا منظم سا نظام کرتی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے آخر میں تشریف لائے تھے. 9 ہجری کا ہلال یعنی ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے، جن کی فہرست یہ ہے. عمال کا نام اور وہ قبیلہ جس سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی، یہ ساتھ ساتھ بولا جائے گا. عیینہ بن حسن کو بنو تمیم سے وصول کرنے کے لیے بھیجا، یزید بن الحسین کو اسلم اور غفار، اور عباد بن بشیر اشخلی سلیم اور مزینہ کی طرف، رافع بن مقیس جو حینہ کی طرف، عمر بن عاص بنو فزارہ، اور ضحاق یا دحاق بن سفیان بنو کلاب، بشیر بن سفیان بنو کعب، ابن لطبیہ ازدی بنو زبیان کی طرف، مہاجر بن امیہ شہر سنا، ان کی ہی موجودگی میں ان کے خلاف اسود انسی نے سنا میں خروج کیا تھا. آپ اسود انسی کا نام پڑھتے ہیں کہ جو اس نے بعد میں اللہ کے نبی کے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اسی کی طرف اشارہ. زیاد بن لبید علاقہ حضر موت، عدی بن حاتم تئی اور بنو اسد، اور مالک بن نویرہ بنو حنزلہ، زبرقان بن بدر بنو سعد کی ایک شاخ، اور قیس بن عاصم بنو سعد کی دوسری شاخ، علا بن الحزرمی علاقہ بحرین کی طرف، اور علی بن ابی طالب علاقہ نجران، یعنی زکوٰۃ اور جزیہ دونوں وصول کرنے کے لیے یہ سب کو نامینیٹ کیا گیا. واضح رہے کہ یہ مال محرم 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ بعض بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا. البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا محرم 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हुए। क्या सीखा इससे? कामों को ऑर्गेनाइज कीजिए, ड्यूटीज़ को असाइन कीजिए। ख़ास तौर पे अब जो चीज़ें हम सीख रहे हैं और जो काम आगे करने हैं, इसमें जितने ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितना काम और करने वालों के नाम, क्या करना, कैसे करना, फिर उसका बैकअप रखना, फिर उसका हिसाब करना कराना, उतनी इंशाल्लाह कामयाबियां भी होंगी। यानी आपने चीज़ों को एक ही पिटारे में डालकर नहीं छोड़ा, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम लिए। इसके बाद जो सराया थे, जिस तरह कबाइल की तरफ ज़कात वसूल करने के लिए उमाल भेजे गए, इसी तरह जजीरतुल अरब के आम इलाकों में अमनो अमान कायम हो चुकने के बावजूद बास मकामात पर मुतद्दद फौजी मुहिमात भी भेजनी पड़ी। फहरिस्त है, यानी ये सब कुछ हो ही रहा था, लेकिन कुछ जगह पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि फिर आपको फौजियों को भेजना पड़ा। मसलन सरिया उयैना बिन हिसन फजारी, मुहर्रम 9 हिजरी में हुआ। उयैना को 50 सवारों की कमान देकर बनु तमीम के पास भेजा गया था। वजह यह थी कि बनु तमीम ने कबाइल को भड़काकर जिजिया की अदायगी से रोक दिया था। इस मुहिम में कोई मुहाजिर या अंसारी नहीं था। उयैना बिन हुसैन रात को चलते और दिन को छुपते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि सहरा में बनु तमीम पर हल्ला बोल दिया। ये लोग पीठ फेर कर भागे और इनके 11 आदमी, 21 औरतें और 30 बच्चे गिरफ्तार हुए, जिन्हें मदीना लाकर रमला बिनते हारिस के मकान में ठहरा दिया गया। फिर इनके सिलसिले में बनु तमीम के 10 सरदार आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर यूं आवाज़ लगाई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आओ। आप बाहर तशरीफ़ लाए तो ये लोग आपसे चिमट कर बातें करने लगे। फिर आप इनके साथ ठहरे रहे, यहाँ तक कि जोहर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद मस्जिद नबी के सहन में बैठ गए। उन्होंने फ़ख्र व मुबाहात में मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर की और अपने खतीब अत्तार बिन हाजिब को पेश किया। उसने तकरीर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीब इस्लाम हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास को हुक्म दिया और उन्होंने जवाबी तकरीर की। इसके बाद उन्होंने अपने शायर ज़िबरकान बिन बदर को आगे बढ़ाया और उसने कुछ फ़ख्रिया इशार कहे। इसका जवाब शायर इस्लाम हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दिया। जब दोनों खतीब और दोनों शायर फारिग हो चुके, तो अक़्रो बिन हाबिस ने कहा, इनका खतीब हमारे खतीब से ज़्यादा पुरजोर और इनका शायर हमारे शायर से ज़्यादा पुरगो है। इनकी आवाज़ें हमारी आवाज़ों से ज़्यादा ऊंची हैं और इनकी बातें हमारी बातों से ज़्यादा बुलंद पाए हैं। इसके बाद इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बेहतरीन तहाइफ से नवाजा और इनकी औरतें और बच्चे इनको वापस कर दिए। तो ये देखिए क्या खूबसूरत बात है कि आप लोगों के साथ मामला उनके हिसाब से करते थे। अगर कोई अच्छा मामला करता तो आप फिर उसके साथ ज़बरदस्ती जंगो जिदाल नहीं करते थे। फिर इसमें यह भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर गए और लोग आपसे चिमट कर बातें करने लगे, ठहरे बातें की, तो सहाबे कराम अपने दिल की बात अल्लाह के नबी से भी करते थे। और ख़ास तौर पे देखिए, जोहर की नमाज के बाद मस्जिद नबी में जब लोग बैठे और कुछ बढ़ बढ़ कर बातें करने लगे, तो फिर अल्लाह के नबी ने भी उसका जवाब देने के लिए साबित बिन कैस को मुकर्रर किया। तो इससे पता चलता है कि लीडरशिप में कदम कदम पे फैसले करने पड़ते हैं। अगर आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं, तो इसको सीखिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज़ योर लाइफ मेकिंग। आपका कैरियर बिल्ड भी हो या बिगड़ जाए, आज आप मैं जो भी हैं, ये हमारे फैसले का ही नतीजा है ना। कभी कभी हम अपने किसी फैसले या कभी कभी हमारे माँ बाप की तरफ से किए हुए फैसले की आड़ में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, परेशानियों और दुखों में। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने मामले को वैसे ही रखा जैसे कि होना चाहिए था, और औरतों को और बच्चों को भेज दिया। ये भी बहुत प्यारा मिजाज है आपका कि आप ज़बरदस्ती लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर इसके बाद सरिया कुतबा बिन आमिर था, सफ़र 9 हिजरी में। यह सरिया तुरबा के करीब तबाला के इलाके में कबीला खसम की एक शाख की जानेब रवाना किया गया। कुतबा 20 आदमियों के दरमियान रवाना हुए। 10 ऊँट थे जिन पर ये लोग बारी बारी सवार होते थे। मुसलमानों ने शब खून मारा, यानी रात को हमला हुआ, जिस पर सख्त लड़ाई भड़क उठी और फरीकैन के खासे अफराद जख्मी हुए। कुतबा कुछ दूसरे अफराद समेत मारे गए, ताहम मुसलमान भेड़ बकरियों और बाल बच्चों को मदीना हांक लाए। तो इससे क्या पता चलता है कि 20-20 लोगों की भी छोटी छोटी झड़पें हुई। मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी क्लासें हैं, कोई 2 दिन की, कोई 1 दिन की, कोई 4 घंटे की, कोई 2 घंटे की, यानी कुछ ना कुछ आप अपने साथियों को काम देते ही रहते थे। याद रखिए कि इससे लोगों में ईमान भी आता है, मजीद काम करना भी आता है। उनकी तो जंगें थी, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि आज उम्मते मुस्लिमा को भी जंगों पे अपना माल या वक्त लगाना पड़े, क्योंकि जिन पैसों से कलम नहीं खरीदे जाते फिर उनसे तीर तलवार खरीदने पड़ते हैं। अगर आज हम दावा और तबलीग के ऊपर मेहनत और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों के सरों पर जो जंगें मुसल्लत की गई हैं उसकी नौबत नहीं आएगी। फिर अगला था सरिय दहाक बिन सुफियान कल्लाबी, रबी अव्वल सन 9 हिजरी में हुआ ये सरिया। ये सरिया बनु कलाब को इस्लाम की दावत देने के लिए रवाना किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए जंग छेड़ दी। मुसलमानों ने इन्हें शिकस्त दी और इनका एक आदमी तहे तह किया। आज आप किसी को कोई अच्छी बात कहें तो जंग नहीं छिड़ती, बाज़ लोग तो आपके सर के बालों को पड़ने लगेंगे। तो घबराए ना करें, अपनी इसलाह करें, अपनी तरबियत करें, अपने बोलने के बात करने के अंदाज़ दुरुस्त कीजिए और बाकी फिर मामला अल्लाह पे डाल दें। फिर अगला था सरिय अलकमा बिन मिजर्स मुदलजी, ये मदलज कबीला था, रबी आखिर में सन 9 हिजरी में हुआ। इन्हें 300 आदमियों की कमान देकर साहिल जद्दा की जानिब रवाना किया गया। वजह यह थी कि कुछ हबशी साहिल जद्दा के करीब जमा हो गए थे और वह अहले मक्का के खिलाफ डाका जनी करना चाहते थे। अलकमा ने समंदर में उतरकर एक जजीरे तक पेशकदमी की। हबशियों को मुसलमानों की आमद का इल्म हुआ तो वो भाग खड़े हुए। इससे पता चलता है कि ये कोशिशें जो होती हैं ना, ये फिर शैतान को और गलत काम करने वालों को टिकने नहीं देती, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अपने काम के और अपनी धुन के पक्के हैं। फिर सरिया अली बिन अबी तालिब रबी अव्वल सन 9 हिजरी में हुआ। इन्हें कबीला तई के एक बुत को, जिसका नाम कल्स यानी कलीसा था, ढाने के लिए भेजा गया। आपकी सरकर्दगी में 100 ऊंट, 50 घोड़ों समेत 150 आदमी थे। छंडियाँ काली और फरेरा यानी झंडा सफ़ेद था। मुसलमानों ने फजर के वक्त हातम ताई के मोहल्ले पर छापा मारकर कल्स यानी उसी कलीसा को ढा दिया और कैदियों और चौपायों और भेड़ बकरियों पर कब्जा कर लिया। इन्हीं कैदियों में हातिम ताई की साहबजादी भी थी। अलबत्ता हातिम के साहबजादे अदी मुल्क शाम भाग गए। मुसलमानों ने कल्स के ख़जाने में 3 तलवारें और 3 ज़िरें पाईं और रास्ते में माल गनीमत तकसीम कर लिया। अलबत्ता मुंतखब माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहता कर दिया और आले हातिम को तकसीम नहीं किया। मदीना पहुंचे तो हातिम की साहबजादी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम की दरख्वास्त करते हुए अर्ज़ किया। क्या कहा उसने? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ जो आ सकता था लापता है। वालिद गुजर चुके हैं, मैं बुढ़िया हूँ, खिदमत करने की ताकत नहीं रखती। आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह ताला आप पर एहसान करेगा। आपने दरियाफ़ फरमाया, तुम्हारे लिए कौन आ सकता था? बोली, अदी बिन हातिम। फरमाए, वही जो अल्लाह और रसूल से भागा है। फिर आप आगे बढ़ गए। दूसरे दिन इसने फिर यही बात दोहराई और आपने फिर वही फरमाया जो कल फरमाया था। तीसरे दिन इसने फिर वही बात कही तो आपने एहसान फरमाते हुए इसे आज़ाद कर दिया। उस वक्त आपके बाजू में एक सहाबी थे जो कि गालिबन हज़रत अली थे रज़ी अल्लाह अन्हो। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी का भी सवाल करो। इसने सवारी का सवाल किया, आपने सवारी फ्राहम करने का भी हुक्म सादिर फरमा दिया। हातिम की साहबजादी लौट कर अपने भाई अदी के पास मुल्क शाम गई। जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्हें रसूलुल्लाह के बारे में बतलाया कि आपने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि तुम्हारे बाप भी वैसा नहीं कर सकते थे। इनके पास रग़बत या खौफ के साथ जाओ। चुनाचे अदी किसी अमान या किसी भी तहरीर के बगैर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। आप इन्हें अपने घर ले गए और जब वो सामने बैठे तो आपने अल्लाह की हमदो सना की। फिर फरमाया, तुम किस चीज़ से भाग रहे हो? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से भाग रहे हो? अगर ऐसा है तो बताओ, क्या तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी और माबूद का इल्म है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर आपने कुछ देर गुफ्तगू की, इसके बाद फरमाया, अच्छा तुम इससे भागते हो कि अल्लाह अकबर कहा जाए। क्या तुम अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ जानते हो? यहाँ से नोट कीजिए, दलाइल खूबसूरत तरीके से सामने जो शख्स है उसको देख कर बात करते थे अल्लाह के नबी। आपने फरमाया, यहूद पर अल्लाह के गजब की मार है और नसारा गुमराह हैं। उन्होंने कहा, मैं यक रुखा मुसलमान हूँ, यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा फरते मुसर्रत से दमक उठा। इसके बाद आपके हुक्म से इन्हें एक अंसारी के यहाँ ठहराया गया और वो सुबह शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे। इब्ने इसहाक ने हजरत अदी से भी ये रिवायत की है कि जब अल्लाह के नबी ने अपने सामने अपने घर में बिठाया तो फरमाया, ओ अदी बिन हातिम, क्या तुम मजहबन रकूसी ना थे? अदी कहते हैं, मैंने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, क्या तुम अपनी कौम में माले गनीमत का चौथाई लेने पर अमल पैरा नहीं थे? यानी 25% जो उधर टैक्स था या ज़कात थी कह ले। मैंने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, हालांकि तुम्हारे दीन में हलाल नहीं। इससे नसारा की जो तब्दीलियाँ थी दीन में और अपनी मर्जी की कमी बेशियाँ थी उसका जिक्र भी आपको मिल रहा है। खैर, ये कहते, मैंने कहा, हाँ कसम बखुदा, इसी से मैंने जान लिया कि वाकई आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, क्योंकि आप वो बात जानते हैं जो जानी नहीं जाती। मुसनद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदि इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे। मैंने कहा, मैं तो खुद एक दीन का मानने वाला हूँ। आज भी लोग कहते हैं, हम भी तो कुछ कर रहे हैं ना, हमें भी तो ये पता है ना, और हमारा भी मसलक है और हमारे भी सब कुछ, यानी तकाबुल शुरू होने लगता है। आपने फरमाया, मैं तुम्हारा दीन तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैंने कहा, आप मेरा दीन मुझसे बेहतर तौर पर जानते हैं? आपने फरमाया, हाँ। क्या ऐसा नहीं कि तुम मजहबन रकूसी हो और फिर भी अपनी कौम के माल का चौथाई खाते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, ये तुम्हारे दीन की रूह से हलाल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर मुझे सरनगू हो जाना पड़ा। यानी अल्लाह के नबी की ये बातें इसको यकीन दिला गई कि आप सच्चे नबी हैं। इसी तरह सही बुखारी में हज़रत अदी से मरवी है कि मैं खिदमत नबवी में बैठा था कि एक आदमी ने आकर फाके की शिकायत की। आप देखिए कि कैसे आम तौर पर लोग आकर आपसे बात करते थे। फिर दूसरे शख्स ने आकर राहज़नी की शिकायत की। आपने फरमाया, अदी, तुमने हीरा, एक जगह का नाम है, देखा है? अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम देख लोगे कि हौदच नशीन औरत, यानी एक पालकी में या कह लीजिए कि अपनी सवारी के ऊपर किसी चीज़ में बिठाई हुई औरत, हीरा से चलकर आएगी, खाना काबा का तवाफ करेगी और इसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम किसरा के ख़जाने फतह करोगे, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि आदमी चुल्लू भर कर सोना या चांदी निकालेगा और ऐसे आदमी को तलाश करेगा जो इसे कबूल करे, तो इसे कोई कबूल करने वाला न मिलेगा। इसी रिवायत के आखिर में हज़रत अदी का बयान है कि मैंने देखा कि हौदच नशीन औरत हीरा से चलकर खाना काबा का तवाफ करती है और इसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं, और मैं खुद इन लोगों में था जिन्होंने किसरा बिन हुरमस के खजाने फतह किए। और अगर तुम लोगों की ज़िंदगी दराज हुई तो तुम लोग भी वो चीज़ देख लोगे जो नबी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि आदमी चुल्लू भर सोना या चांदी निकालेगा। देखिए, एक एक बात नहीं सच हो रही। और ये जो बीच में दो दफ़ा लफ्ज़ है ना, रकूसी मज़हब, तो बेसिकली रकूसी मज़हब क्या था? ईसाई और साबी मज़हब के दरमियान एक तीसरा मज़हब था। यानी ये कोई एक नई ही चीज़ थी। तो इन सारी बातों को पढ़कर सुनकर क्या लगा कि हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सामने रख के उन चीज़ों को लेकर चलना है, और जो चीज़ें इस वक्त आपके मेरे सामने हैं इनको अपने मुताले में, अपने गौर व खौज में रखते हुए इस चीज़ की नियत और ख्वाहिश करनी है कि अल्लाह ताला हमें भी मेहनत करने वाला बना दे, दीन के लिए जद्दोजहद करने वाला बना दे। और अब इसके आगे तो वो टॉपिक शुरू होगा जो वाकई फ्रेश माइंड के साथ सुनने वाला है, ग़ज़वे तबूक, जो कई दिन तक चलेगा। पूरी सूरत तौबा और कुछ हिस्सा अनफाल का भी आपको इसमें याद आ जाएगा। दुआ कीजिए कि ये एक एक चीज़ अल्लाह ताला हमारे हक में हुज्जत बनाए और हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।